तेरी छवि है निराली, महक उठी है गलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली, साथ तेरी हम रह पाते हर कदम पे।
ओम शांति। समय प्रत समय बाप दादा हम सबको तीव्र पुरुषार्थ की प्रेरणा देते रहते हैं। समय की गति जिस तीव्रता से चल रही है, हम सभी बच्चों का पुरुषार्थ भी इतना ही तीव्र हो, उसके लिए अनेक विधियां, अनेक युक्तियां बाबा ने हम सबको सुनाई हैं, और लास्ट में आने वाले बच्चों को भी फास्ट जाने का बहुत सुंदर अवसर बाबा दे रहे हैं। जैसे समय की गति बहुत फास्ट है, हम सब जानते हैं, साइंस ने ऐसे ऐसे साधन तैयार कर दिए हैं जो कितनी फास्ट गति से देश की दूरियां समाप्त हो गई हैं, और वर्तमान समय ऐसे ऐसे साधन साइंस ने बनाए हैं जो सेकंड में यहाँ बैठे विदेश के किसी कोने में किसी से भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाबा हम सबको कल भी कह रहे थे वो साइंस का घमंड है, लेकिन आप बच्चों के पास साइलेंस की शक्ति है, और इस साइलेंस की शक्ति के द्वारा आप अपनी स्पीड को बहुत फास्ट कर सकते हो। तो हमारा पुरुषार्थ कितना फास्ट है वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन के दर्पण से दिखाई दे, बहुत सुंदर विषय है, और हम सभी अपने जीवन से ही बाबा को, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अगर जीवन हमारा उत्तम है, श्रेष्ठ है, चरित्रवान है, तो किसी को बताने की, ज्ञान सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप उनको आता है कि आपको ऐसा जीवन किसने दिया, कैसे आपने ऐसी जीवन बनाई है, क्योंकि इस दर्पण से लोगों को बहुत कुछ दिखाई देता है। जीवन ही दर्पण है, वैसे भी दर्पण के आगे अगर कोई चला जाए तो उसको अपना पूरा ही रूप रंग हुलिया दिखाई देता है, कहाँ पर कौन सा दाग है, किस प्रकार से हमारी बनावट सजावट है, वो सब हम दर्पण के आगे देख सकते हैं। और बाबा ने हमारी जीवन ही ऐसी बना दी है जो लोगों के लिए दर्पण का काम करती है। ज्ञान हमारे स्वरूप में आता जाता है तो ये जीवन दर्पण बन जाती है। तो आज हम आप सबको बाबा के द्वारा बताई हुई तीव्र पुरुषार्थ की कुछ विधियां, तीव्र पुरुषार्थ किसे कहा जाता है और कैसे हम सभी तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी ऊंचे से ऊंची मंजिल को प्राप्त कर लें। जब किसी मार्ग पर चलना होता है और तीव्रता से चलना होता है तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी अगर आप किसी साधन से यात्रा करते हैं और उसकी गति फास्ट है तो चलाने वाले उसको बहुत कंट्रोल में रख करके चलाते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो हम सबको बाबा समय के अनुसार संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए फास्ट गति का पुरुषार्थ कराना चाहते हैं, और शुरू से आज तक बहुत सी ऐसी युक्तियां बाबा ने बताई हैं जिससे हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाए, क्योंकि जब तीव्रता होती है, लगन होती है, तो कोई भी बात को, कोई भी विघ्न को पार करना बहुत सहज होता है, नहीं तो छोटी छोटी बातें भी अनेक प्रकार की रुकावट डाल देती हैं और चलते हुए मार्ग में अगर बार बार रुकावट आती है, रुकना पड़ता है, तो आप समझते हैं उस पुरुषार्थ की स्पीड क्या होगी, कब पहुंचेंगे। तो मार्ग की रुकावटें समाप्त हो जाएं, ट्रैफिक समाप्त हो जाए, जैसे उस ट्रैफिक में अगर कोई फंस जाता है तो पहुंचने का समय अगर एक घंटे का, दो घंटे का होता है तो उसमें तीन घंटे, चार घंटे भी लग जाते हैं। बहुत समय, बहुत एनर्जी, बहुत संकल्प उसके पीछे व्यर्थ जाते हैं। ऐसे ही हम सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अगर किसी भी कारण से बीच बीच में रुक जाती हैं या चलते चलते मार्ग परिवर्तन हो जाता है तो भी बहुत समय व्यर्थ चला जाता है। स्पीड बहुत फास्ट हो पुरुषार्थ की, लेकिन चलते चलते आप रास्ता बदल दें, भले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उल्टे रास्ते पर चले जाएं और फिर आपको लगे नहीं ये गलत रास्ते पर हम आ गए हैं, वापस चलो, तो मैं समझता हूँ वो 2-3 किलोमीटर जो आप चले गए उल्टे रास्ते पर, पीछे आने में जो मेहनत और तकलीफ का अनुभव होता है, जो संकल्प चलते हैं, लगता है बहुत कुछ हमने व्यर्थ कर दिया, वो स्पीड जो थी उसमें ब्रेक लग गए। तो हमारे पुरुषार्थ में भी कई बार चलते चलते कहीं न कहीं रास्ता अगर मुड़ गया, बाबा ने हम सबको सीधा रास्ता दिखाया है, बच्चे बहुत सहज मार्ग है, ज्ञान मार्ग, सहज योग का मार्ग, लेकिन कई बार आगे बढ़ते हैं ज्ञान मार्ग के अंदर तो कुछ एक आत्माएं जो ज्ञानवान हैं, जिनको महारथी कहते हैं, जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनके समीप जब हम जाते हैं तो उनकी कमियां, उनकी कमजोरियां, उनके कुछ संस्कार दिखाई देते हैं और उनको देख करके आत्मा सोचने लगती है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन शायद एक कहावत है, दूर के ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं, लेकिन नजदीक में जाते हैं तो लगता है इसमें तो पोल भी है। तो कई बार हमारा मार्ग वहां पर स्लो हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, हम दूसरों को देख करके अपने पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं। इसलिए बाबा हम सबको बहुत सुंदर युक्तियां बताते हैं, बच्चे तुम किसी को भी नहीं देखो, केवल सी फादर फॉलो फादर। आत्माएं नंबरवार हैं, पुरुषार्थी हैं और हर एक अपने अपने पार्ट अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। अगर आपको नंबर बनाना है, देश करनी है, विजयी माला का मणका बनना है, तो आपको अपनी मंजिल सामने रखनी है। चार बातें मैं आपके ध्यान पर दूंगा, जिस लक्ष्य से हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को सदा स्मृति में रखें कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा ने हमें चुना है, बाबा ने हमें अपना बनाया है, इसके पीछे क्या राज है, बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है, और उसी लक्ष्य को स्मृति में रख, उसी गोल को स्मृति में रख, यदि हम पुरुषार्थ की रेस करते हैं तो मंजिल पर समय पर पहुंचना सहज है। और अगर लक्ष्य परिवर्तित हो गया, उस गोल को भूल गए कि हम तय थे मनुष्य से देवता बनने के लिए, या ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने के लिए, तो जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हर एक अपने इस लक्ष्य को सामने रख करके देखते चले कि क्या वो फरिश्तापन की क्वालिटीज, उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं या बीच बीच में रुकावटें आती हैं, बोझ आ जाते हैं, और लक्ष्य के अनुसार जैसा लक्ष्य रखा जाता है लक्षण भी वैसे आते हैं। इसलिए लक्ष्य के अनुसार लक्षण हैं, या लक्ष्य बड़ा ऊंचा है और लक्षण में थोड़े थोड़े कमियां दिखाई देती हैं। खुद की कमियां खुद के दर्पण में हम बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए जीवन दर्पण में हम बहुत अंदर जाकर के झांक करके देखते हैं कि कौन सी कमियां, कौन से दाग, कौन सी नेचर ऐसी है जो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाने देती, रुकावट आ जाती है। तो इसके लिए एकांत की भी जरूरत पड़ती है। कुछ समय अंतर्मुखी रहकर अंदर जाकर के अपने आप को देखना पड़ता है। कई बार हमें दादियां बताती हैं, बाबा भी एक बार हंसी में मुरली चला रहे थे, कह रहे थे बच्चों की ये जो दूर की दृष्टि है वो बहुत पावरफुल है और जो नजदीक की दृष्टि है वो कमजोर हो गई है। अपने आप को देखने की जो दृष्टि है उस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन दूसरा क्या करता है उस पर फौरन ध्यान चला जाता है। उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां नोट हो जाती हैं, और सिर्फ नोट ही नहीं होती हैं, उनका वर्णन, उनका चिंतन, पास्ट का चिंतन या पर चिंतन हमारी प्रभु चिंतन में फास्ट गति में रुकावट डाल देता है। इसलिए फास्ट पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए उसमें हमारा सोचना, बोलना और करना जब तीनों की समानता हो जाती है, जो कुछ हम सोचते हैं वही मुख से बोलते हैं और वही कर्म में करते हैं। ऐसे नहीं है सोचना बहुत ऊंची बातें, बोलने में कुछ साधारणता और कर्म उससे भी साधारण हो जाएं। इसलिए सोचने के साथ साथ बोल और कर्म भी इतने श्रेष्ठ और ऊंचे हों, तीनों की समानता ही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। और साथ साथ बाबा कहते हैं जो कुछ बाबा के मुख से निकलता है तुरंत हाँ जी करना और उसी पुरुषार्थ को करने लग जाना, क्या होगा, कैसे होगा, कर सकूंगा या नहीं, इन प्रश्नों में उलझने की बजाय बाबा ने कहा है मुझे करना है, ये तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है। जो करना है अब करना है, कब नहीं। अगर कहते कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, तो बाबा कहते हैं कर लेंगे, जिसने कहा वो छूट गया, उससे अलबेलापन है, ये सुस्ती है। इसलिए जो सेवा, जो पुरुषार्थ की बातें हमें बताई जाती हैं, जो श्रीमत मिलती है, तो जो मैं चार बातें आपको बता रहा था, एक पहला लक्ष्य हमारे सामने है, उद्देश्य, और दूसरा बाबा का आदेश क्या है, श्रीमत क्या है। अगर आदेश को हम सामने रखते हैं तो आदेश मिला, फरमान मिला, और जो तुरंत फरमान पर चलते हैं उसको पालन कर लेते हैं, फरमान बरदार हैं, वो तीव्र पुरुषार्थी कहलाते हैं। अगर कर लेंगे, देखेंगे, बड़ी बात है, किसने अभी तक किया है, इस प्रकार के संकल्प उसमें मिक्स हो जाते हैं तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। इसलिए बाबा का आदेश माना, सतगुरु की आज्ञा है, फरमान है, बाबा ने कहा है मुझे करके दिखाना है, उसमें कोई भी संकल्प में भी संशय ना आए, मैं कर सकूंगा या नहीं। अगर नहीं मैं कर सकता तो बाबा कहता ही नहीं, मैं जरूर करूंगा, और मैं नहीं तो कौन करेगा। इसलिए इस सुमान में रह करके बाबा ने हमारे में उम्मीदें रखी हैं, आशाएं रखी हैं, आदेश दिए हैं, उस आदेश को मुझे पालन करना है, मैं करके दिखाऊंगा। अगर इस प्रकार का संकल्प है तो पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है। और तीसरी बात है उद्देश्य, आदेश के साथ साथ जो बाबा ने संदेश हम सबको दिया है सुनाने के लिए, वो संदेश सबको हम सुनाते चलें, जो संदेश अभी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, हर आत्मा को बाबा का संदेश मिल जाए, उसके लिए समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, जो कुछ बाबा ने दिया है वो सेवाओं में सफल हो, संदेश में पहुंचने में कोई उलहना न दे कि आपको इतनी सब बातें पता थी, भगवान के अवतरण के बारे में आपको मालूम था, आपने उसका फायदा उठाया, आपने अपना अधिकार लिया, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो संदेश बाबा का पहुंचाने का कर्तव्य फास्ट गति से हो, और जब ये तीव्र गति से संदेश पहुंच जाएगा तो हम सब जानते हैं सहज ही समय समीप आ जाएगा परिवर्तन का। तो संदेश के साथ साथ बार बार बाबा हमको कहते हैं, बच्चे अपने स्वदेश की भी स्मृति रखो। तीव्र पुरुषार्थ उसी का हो सकता है जिसको बार बार याद रहता है कि अब तो जाना है। कैसे जाना है, सजाएं खा करके तो नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा कहता, बच्चे ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो जो पुराने संस्कार, पुरानी आदतें ईश्वरीय आदतों में बदल जाएं। संगम युग पर हम सब अपनी ऐसी आदतें बना लें, ऐसे स्वभाव बना लें जिससे हमें कोई भी प्रकार का कष्ट न हो और अन्य आत्माओं को भी उसे सुख की अनुभूति हो, वो ईश्वरीय संस्कार बन जाएं। ईश्वरीय संस्कारों पर जिनका ध्यान है, कैसे बनेंगे ईश्वरीय संस्कार, क्योंकि वो संस्कार प्रबल हैं जो 63 जन्मों से चले आए हैं। बीच बीच में थोड़ा सा भी अगर अटेंशन कम होता है तो बाहर आ जाते हैं, उछल जाते हैं, चाहे वो काम विकार का संस्कार है, चाहे क्रोध का है, चाहे लोभ वृत्तियों का है, मोह का है, अहंकार का है, या कोई भी ऐसा उसका बाल बच्चा ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, वैर है, बहुत सी उसकी रचना है, वो संस्कार बने हुए हैं, आदतें बनी हुई हैं। और बीच बीच में वो प्रबल आदतें अपना वार कर देती हैं, हार खिला देती हैं। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो संकल्प में भी हार नहीं खाती। क्यों नहीं खाती, क्योंकि वो व्यर्थ संकल्पों पर बहुत कड़ी नजर रखती हैं। जिनकी कड़ी नजर है कि ये संकल्प व्यर्थ है, ये नहीं करना है, वो अपने आप को खुद व्यस्त रखते हैं, शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं। तो बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा शुद्ध संकल्पों का खजाना दिया है। बाबा की मुरली इतना श्रेष्ठ खजाना है, और इसके साथ साथ इतना ज्ञान का खजाना बाबा की मुरलियों में, ज्ञानामृत में, बाबा का बहुत साहित्य है। अगर उसमें हम खुद व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो बुद्धि को एक अच्छा भोजन मिल जाता है। और जिसका मन और बुद्धि अच्छे चिंतन में, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करता है, व्यस्त रहता है, वो व्यर्थ और नेगेटिव की ट्रैफिक में फंसता नहीं है। इसलिए व्यर्थ और नेगेटिव की ट्रैफिक तो बढ़ती जाएगी। बहुत बातें हैं ऐसी, परिवार के बीच में भी हैं, छोटी छोटी बातें दिखाई देती हैं, और उसको अगर हम साइट सीन करके पार नहीं करते हैं, देखने लगते हैं, ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे होता है, वहां भी ऐसे होता है, मधुबन में भी ऐसे होता है, कोई ने सुना दिया और आपने विश्वास कर लिया, तो आपके पुरुषार्थ में ब्रेक आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। इसलिए मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ बोलना है। इस पर अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया, ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी और आपकी स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगी, पहुंच जाएंगे मंजिल पर। इसलिए बार बार ये स्मृति रहे, ये स्वदेश मेरा क्या है, मेरा घर क्या है, कहाँ जाना है मुझे और किस स्वरूप में मुझे जाना है। जाएंगे तो सभी, बाबा कहता बच्चे मैं तो सबको ले जाऊंगा, चाहे वो बाबा की पढ़ाई से, ज्ञान और योग से अपने आप को पावन बना लें, स्वच्छ बना लें, और चाहे फिर धर्मराज की सजाओं से। लेकिन मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े होकर के सजा खाएंगे तो मुझे भी लज जाएगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे जो बाबा कह रहा है उसको समझ करके तुरंत प्रैक्टिकल जीवन में उतार लो तो बहुत सी सजाओं से स्वतः मुक्त हो जाओगे। वर्तमान समय की सजाएं यही हैं, चलते चलते आत्मा कुछ न कुछ अगर विकल्प करती है, विकर्म कर लेती है, तो उसकी खुशी गायब हो जाती है, शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके अंदर की जो उत्तेजना, जो ज्ञान और योग का जोश होना चाहिए, उमंग और उत्साह होना चाहिए, वो परास्त कर देती है माया, उसमें हार खा लेता है। इसलिए कभी भी माया परास्त न कर सके, उसके लिए तीन और बातें मैं आपको सुना देता हूं। एक, बाबा कहता है बच्चे सदा डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो। मैं आत्मा लाइट हूं, और जब लाइट होती है तब स्पीड फास्ट होती है। वैसे भी अगर अंधकार हो तो स्पीड को बढ़ाया नहीं जा सकता है, कहीं भी ठोकर लग सकती है, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर लाइट है, लाइट डबल लाइट मैं इसलिए कह रहा हूं, एक लाइट हल्कापन है, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। भले आप संसारिक जीवन में हैं, परिवार है, समाज में हैं, बहुत सारे कार्य व्यवहार में आपको आना पड़ता है, बहुत सारी जवाबदारियां भी हैं, लेकिन संगम युग पर यही हम आत्माओं का भाग्य है, जो भगवान कहता है बच्चे सब बोझ मुझे दे दो, अपने ऊपर लेकर के क्यों चलते हो, मैं आया हूं आप बच्चों के बोझ लेने के लिए। तो दिया सबने अपने अपने बोझ लेकर के घूमते हैं। वैसे भी एक हंसी की बात है कि अगर कोई यात्रा पर जा रहा हो, किसी साधन में यात्रा कर रहा हो, मान लो आपको किसी बस में चढ़ा दिया जाए, आप ट्रेन में आते हैं और अपना लगेज ट्रेन में बैठ करके अपने सिर पर रख के बैठे हों, गोद में रख के बैठे हों, तो कैसा लगेगा? लोग कहेंगे क्यों ऊपर उठाए हुए हो बोझ, नीचे रख दो, ये कहीं जाएगा नहीं, ऊपर क्यों रख करके घूम रहे हो। कोई अगर यात्रा कर रहा है, सवारी कर रहा है किसी चीज पर, खुद उस पर बैठा है और वो खुद बोझ अपने सिर पर लेकर के चल रहा है, तो उस यात्रा का आनंद वो कैसे ले सकेगा। हम संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा की गोदी में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। बाबा ने हम सबको अपनी गोद के अंदर बिठाया हुआ है, बच्चे तुम मेरे हो। अब गोद में बैठ करके भी अगर मैं बोझ लेकर के बैठ जाऊं तो बाबा भी क्या कहेगा। इसलिए विचार करना, भले हैं जवाबदारियां, लेकिन क्या इन सबको हमने अर्पित किया है? जब तक हमने बाबा के आगे अपने बोझ अर्पित नहीं किए, तब तक डबल लाइट स्थिति नहीं होगी, और डबल लाइट स्थिति नहीं होगी तो पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ सकती। बोझ वाला कभी भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चाहे वो शरीर का ही बोझ क्यों न हो। आत्मा पर, मन पर इतने बोझ हैं, एक तो पास्ट विकर्मों के बोझ हैं, और चलते चलते कोई न कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका बोझ चढ़ जाता है, और फिर लौकिक जवाबदारियां हैं, ये है ये है ये है, तेरे और मेरे के बहुत सारे बोझ लेकर के अगर कोई चल रहा है तो स्पीड उसकी कैसे आगे बढ़ेगी, विचार कर सकते हैं। इसलिए संगम युग पर बोझ तो बाबा को देना पड़ेगा, अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो बाबा कहता बच्चे मैं आया हूं, तुम दिल से कहो मेरा बाबा, मैं तुम्हारे सब बोझ ले लूंगा। इसलिए डबल लाइट स्वरूप में आत्मा रहे तो पुरुषार्थ की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन लाइट है, उसके साथ अगर माइट नहीं है तो ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना संभव नहीं है। अगर चढ़ाई ऊंचाई की है और इंजन पावरफुल नहीं है, लाइट है, तो लाइट के साथ साथ पावर की कमी, माइट की कमी मंजिल पर पहुंचाएगी नहीं, रुक बीच में रुक जाएगी। इसलिए ऊंची मंजिल के हम सब राही हैं। क्या हमारा लक्ष्य है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। किसी से भी पूछो, नए बच्चे से भी बाबा के पूछ लो, आप क्या बनना चाहते हो, तो कहेगा मैं बाप समान बनना चाहता हूँ। बहुत ऊंचा लक्ष्य है हम सबके सामने, और उसी लक्ष्य के प्रमाण इतनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने के लिए माइट है। हम बाबा से शक्ति लेते हैं, या जब समय बीत जाता है तब याद आता है कि बाबा भी हमारे साथ है। कई बार हमें दादी कहती है, गुलजार दादी हमेशा कहती है, जब भगवान आपके साथ कंबाइंड है, तुम भले कमजोर हो, साथी कौन है? सर्वशक्तिमान आपका साथी है, फिर दिल से कष्ट क्यों होते हो? उसको यूज करो, उसकी शक्तियों को यूज करो, और हार करके फिर कहो अभी क्या करूं, कैसे करूं, खड़े हो जाओगे, फिर कहोगे बाबा मदद करो, तो बाबा कहता मेरी मदद तुम लेते कहां हो। तो हम सब बाबा की मदद का अनुभव करने के लिए, शक्तियों का अनुभव करने के लिए निरंतर तीन बातें उसमें भी हैं। जैसे हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है, कनेक्शन में रिलेशन की जरूरत है। अगर रिलेशन नहीं है, सिर्फ कनेक्शन जोड़ा हुआ है, तो भी प्राप्ति नहीं होती। संबंध की जरूरत है। इसलिए इतना प्यार का संबंध है, बाप और बेटे का संबंध है। भले सर्व संबंध बाबा के साथ हैं, लेकिन संगम पर जितना प्रिय संबंध है बाप और बच्चे का, अधिकार के रूप में अगर हम उसको याद करते हैं, वैसे कई मुरलियों में इस समय साकार बाबा की बार बार आ रहा है, बच्चे सिर्फ बाप को नहीं, अगर तुम तीनों स्वरूप से मुझे याद नहीं करोगे तो भी तुम्हें पूरा वर्षा नहीं मिलेगा। मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो ये जब भी याद करो बाबा को, तो तीनों स्वरूप याद आने चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ बाप की पालना में पल रहे हो, पढ़ाई नहीं है, तो भी स्टेटस नहीं मिलेगा। सतगुरु की श्रीमत पर कहीं भी अलबेले हो गए तो श्रेष्ठ पद से वंचित हो जाओगे। इसलिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों की याद रिलेशन के आधार से कनेक्शन हो, और फिर इतना गहरा कम्युनिकेशन हो, लेन देन हो। बाबा के शक्तियों पर, बाबा के गुणों पर मेरा अधिकार है, तो बाबा का मेरे ऊपर भी अधिकार है। जैसे मैं अपना अधिकार रखता हूँ, ऐसे जो कुछ बाबा ने दिया है, बाबा का दिया हुआ है, हम कहते भी हैं ये तन तेरा है, ये मन तेरा है, ये धन तेरा है, ये सब तेरा है, कुछ मेरा नहीं है। लेकिन अधिकार है बाबा का उस पर, वो जहां चाहे उसको यूज करे, या मैं जहां चाहूं उसको यूज करूं, ये सोचना पड़ेगा। अगर बाबा का अधिकार है उस पर, तो हम बाबा पर अपना अधिकार रख सकते हैं। इसलिए बाबा की शक्तियां प्राप्त करने के लिए बहुत प्यार का संबंध, बहुत अच्छा कनेक्शन जुटा हुआ रहे, और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, गैप न पड़ जाए उसके अंदर। अगर गैप पड़ जाता है, ऐसे लौकिक दुनिया में भी अगर किसी से थोड़ा सा अगर मनमुटाव हो गया, दूरी बढ़ गई, गैप हो गया, तो क्या होता है, और भी दूरियां बढ़ती जाती हैं, समीपता समाप्त हो जाती है, लेन देन समाप्त हो जाती है। संबंध होते हुए भी, संबंध हैं, कनेक्शन भी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन ठीक न होने के कारण एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो क्या होगा, तो भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, और पांच बातें मैं आपको दर्पण में देखने की बताता हूँ। क्या देखो अपने दर्पण में, क्योंकि अगर हम अपने दर्पण में, जीवन के दर्पण में देखेंगे, तो दूसरे भी देख सकेंगे ये इसका तीव्र पुरुषार्थ है, अलबेला नहीं है, इसकी अभी अंदर की तृप्ति नहीं है। एक है तड़पन और एक है तृप्ति। बांधेलियों के लिए बाबा कई बार कहता है, ये तो इनके अंदर तड़पन है, इनका तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा से मिलने के लिए तड़पती हैं, कहां से मुरली मिल जाए पढ़ने के लिए तड़पती हैं, क्लास के लिए तड़पती हैं, बड़ों से मिलने के लिए तड़पन है, मैं मिलूं, दृष्टि मिल जाए, टोली मिल जाए, पुरुषार्थ के लिए दौड़ती हैं, भागती हैं। लेकिन कई हैं जो तृप्त हो गए हैं, जरूरत नहीं, अच्छे से अच्छे क्लास हो रहे हैं, अच्छे से अच्छी पालना हो रही है, चले गए बिस्तर में, सो गए जाकर के, इतनी अच्छी पालना मिलने पर भी कई तृप्त हैं अंदर से, तो क्या कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी हैं। यही अलबेलापन है, यही सोचती है। जब प्राप्ति करने का समय है वहां पर तृप्ति न हो जाए और प्राप्तियां होती जाएं अंदर से, तो प्राप्ति की जिज्ञासा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं जब तक जीना है तब तक सीखना है। ये नहीं मैं तो सब कुछ सीख गया हूं, मुझे सब पता है, क्या क्लास होगा, क्या भाई बोलेंगे, क्या दादी सुनाएंगी, क्या बहनें बोलेंगी, सब मालूम है मुझे। ऐसी अगर तृप्ति आ गई तो तीव्रता समाप्त हो जाएगी, पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ हमारा तीव्र रहे उसके लिए जो पांच बातें हैं, सबसे पहले है हमारी दृष्टि। ये दृष्टि कितनी रूहानी से संपन्न बनी है जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, क्योंकि दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होना है। दृष्टि का ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्व है। हम सभी बाबा की दृष्टि के प्यासे हैं। नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, हमारा बाबा हमें दृष्टि दे दे, हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए और आत्मा पावन बन जाए। कितना बड़ा है दृष्टि का महत्व। लेकिन केवल बाबा की दृष्टि का महत्व तो नहीं है, हर एक आत्मा जो तीव्र पुरुषार्थ कर रही है उसकी दृष्टि में कितनी रूहानियत है, कितनी अलौकिकता है, उसकी दृष्टि से कैसे परिवर्तन हो रहा है, खुद का परिवर्तन भी, और जो सन्मुख आए जिस पर यह दृष्टि पड़ जाए उसके विकल्प समाप्त हो जाएं, विकर्म समाप्त हो जाएं, वो बहुत शांति का, स्नेह का, अपनत्व का अनुभव कर ले, ऐसी एक निश्चल दृष्टि हमारी बन जाए, प्रेम पूर्ण दृष्टि बन जाए, स्नेही दृष्टि बन जाए, रूहानियत की दृष्टि बन जाए, तब ये जीवन दर्पण बन जाएगा। दर्पण से देखते हैं तो दृष्टि से सृष्टि दिखाई देने लगती है, ये दृष्टि जो है। इसलिए बाबा कहता बच्चे दृष्टि जब लेते हो किसी से तो उसकी भ्रकुटी में देखो, शरीर पर नहीं देखो, उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी डेवलप की हुई विशेषताएं हैं, वो भ्रकुटी आसन पर जब दृष्टि जाएगी तो वो दृष्टि के द्वारा आप तक शक्ति आएगी। कल के प्रश्नों में था लेकिन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, किसी ने बात पूछी थी, मुझे बताया गया था कि दृष्टि का क्या महत्व है योग में, क्या दृष्टि लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है हम अपने तरह से योग करते हैं, लेकिन अगर कोई पावरफुल आत्मा सामने बैठी हुई है, योगी आत्मा सामने है, जिसकी दृष्टि बहुत शुद्ध है, पवित्र है, रूहानियत से संपन्न है, अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं दृष्टि से, तो उसकी दृष्टि में भी भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखना, क्योंकि दोनों दृष्टि के बीच में भ्रकुटी है, आत्मा वहां विराजमान है, तो आत्मा को देखने से उसकी क्वालिटीज अपने अंदर आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपनी दृष्टि को कहां तक शुद्ध आत्मिक और रूहानियत से संपन्न बनाया है वो चेक करें। ऐसा नहीं बार बार देह पर, रूप पर, रंग पर, किसी के बार बार दृष्टि चंचल हो जाती है, खराब हो जाती है, दृष्टि बहुत धोखा भी देती है। इसलिए बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती, सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है। इसलिए ध्यान रखना है तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अपनी दृष्टि को कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र बनाया है। और उसके साथ साथ दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण हमारा कहां तक परिवर्तन हुआ है, एक दूसरे को देखने का नजरिया, जिसको कहते हैं वृत्ति बन गई उससे। अगर हम किसी को कोई अशुद्ध रूप में, गलत रूप में, दैहिक रूप में देखते जाते हैं तो हमारी वृत्तियों के अंदर उसके प्रति क्रिमिनलिटी आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है। इसलिए बाबा ने हमारी दृष्टि का परिवर्तन किया। हम तो ये कहते हैं कि बाबा बहुत बड़ा ऑपरेशन सबसे पहला अपने बच्चों का करता है, आंखों का, आंखें चेंज कर देता है। जो देह की देखने की दृष्टि थी चेंज कर दिया, बच्चे तुम देह को नहीं देखो, ये सांप है, ये दस लेगा, तो मणि को देखो, आत्मा को देखो, उससे शक्ति मिलेगी। तो दृष्टि परिवर्तित हुई और दृष्टिकोण बदल गया, हमारी वृत्तियां चेंज हो गई। तब दर्पण बने। जब वृत्तियां अंदर से चेंज होती तो वृत्तियां चेंज होने से वाइब्रेशन आते हैं। अगर वृत्तियां हमारी खराब है अंदर की, आपको अच्छे वाइब्रेशन हमसे नहीं मिल सकते हैं। इसलिए वृत्तियां हमारी निर्दोष हो हर आत्मा के प्रति, वृत्तियां हमारी निष्काम हो, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी आत्मा से, कोई कामना नहीं, लेना एक से है और सबको देना है। अगर निष्काम वृत्ति है, निर्दोष वृत्ति है, अनासक्त वृत्ति है, उपराम और वैराग्य की वृत्ति है, तो ये वृत्ति, ये जीवन दर्पण बन जाएगा, दिखाई देगा लोगों को। इसलिए अपनी वृत्तियों पर ध्यान दें कि हमारी वृत्तियां चेंज हुई हैं या वही दैहिक वृत्तियां हैं, या अभी तक भी हम वही देह को देखते हैं, देह को देख के बात करते हैं, देहधारी ही अच्छे लगते हैं, देह का ही चिंतन चलता है। रूहानियत आ जाएगी तो वृत्तियां चेंज हो जाएगी, और वृत्ति चेंज होने के बाद हमारी स्मृतियां अच्छे से अच्छी बन जाती हैं। चारों ही सब्जेक्ट का आधार स्मृति है। ज्ञान की भी स्मृति दिलाई, बच्चे तुम क्या थे, क्या बने हो, क्या बनोगे, तीनों कालों की स्मृति दिलाई बाबा ने, त्रिकालदर्शी बनाया है। लाइट माइट के साथ साथ डिवाइन इंसाइट दिया है, तीसरा नेत्र दिया है, बच्चे देखो इसे क्या, तुम्हारा नेत्र कितना पावरफुल होना चाहिए। इसलिए तीसरा नेत्र देकर के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, आदि मध्य अंत को देखना बाबा ने हम सबको सिखाया है। देखते हैं हर एक आत्मा का पास्ट कितना अच्छा है, पूज्य आत्मा थी, प्रेजेंट में भगवान की पालना के अंदर है, ब्राह्मण आत्मा है और बनने वाली देवता है। डिवाइन इंसाइट से हम देख रहे हैं, तीसरे नेत्र से, दिव्य नेत्र से क्या दिखाई देता है, ये कितनी पूज्य आत्माएं हैं हम सभी, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके आगे भक्त लाइन में खड़े हुए हैं आरती उतारने के लिए, दर्शन करने के लिए, ये सब आत्माएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, ये पूज्य आत्माएं हैं। पास्ट में पूज्य आत्माएं हैं और वर्तमान में ब्राह्मण डायरेक्ट ब्रह्मा मुख की संतान शिव बाबा की पालना के अंदर पल रही हैं, और भविष्य इनका कितना उज्ज्वल है, जो यही देव आत्माएं बन करके स्वर्ग में अपना राज्य भाग पाने वाली है। ऐसी डिवाइन इंसाइट बनी है, स्मृति ये रहती है। हम सब अपने अपनी स्मृतियों को चेक करें, अगर ऐसी स्मृति रहती है तो यह जीवन दर्पण बन जाएगा। फिर है बोल, क्योंकि बोल अगर साधारण है, अधिक है, जो आता है हम बोल देते हैं, जब आता है बोल देते हैं, बहुत से बोल से बहुत से नुकसान होते हैं। ध्यान रखें हर एक ब्राह्मण आत्मा, बोल पर संपूर्ण कंट्रोल चाहिए। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जैसा आया बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया, ये बोल बहुत नुकसान करते हैं, संबंधों में दूरियां बढ़ा देते हैं। इसलिए बोल में मधुरता, बोल में एक सम्मान, जो बोल आवश्यक है वही निकलें, युक्ति युक्त है वही बोल बोलें। हर एक का अगर बोल पर ध्यान है तो उसका पुरुषार्थ अपने आप तीव्र हो जाएगा। अगर बोल में मधुरता नहीं है, बोल में पवित्रता नहीं है, बोल में अंदर का सम्मान और सम्मान देने की भावना नहीं है, अहंकार दिखाई देता है, नम्रता नहीं है, तो ये बोल दुखदायी बन जाएंगे। इसलिए बोल पर कंट्रोल। पांचवी बात है कर्म। ब्राह्मण आत्माएं कौन से कर्म कर रही हैं, हर एक को अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। सतयुग के अंदर हमारे कर्म अकर्म बनेंगे, द्वापर से कर्म विकर्म बने हैं, लेकिन संगम युग ही है जब हम अपने हर कर्म को सुकर्म बना सकते हैं बाबा की याद से, और ऐसे सुकर्म जो सुख दें और सुख लें, संतुष्ट रहें और सबको संतुष्ट करें, प्रसन्न रहें और सबको प्रसन्न चित्त बना दें। तो अगर हम सभी अपने जीवन को तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा दर्पण बनाना चाहते हैं प्रैक्टिकल में, तो इन पांचों बातों को चेक करें। जैसा बाबा चाहता है वैसा हमारा ये जीवन है। प्रैक्टिकल में है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी वृत्तियां कैसी हैं, हम किन स्मृतियों में सदा रहते हैं, पास्ट की स्मृतियां, बीती हुई गलत बातों की स्मृतियां, कोई ऐसे कर्म हुए उनकी स्मृतियां हैं, या अच्छे अच्छे अच्छी स्मृतियां ज्ञान की, योग की, धारणाओं की, अपने ब्राह्मण जीवन की, बाबा की स्मृतियों में हम रहते हैं कोई, और हमारे बोल कैसे हैं, फिर हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं, अगर इन बातों पर हमारा संपूर्ण ध्यान है तो ये जीवन अपने आप एक प्रैक्टिकल दर्पण बन जाती है, लगता है इसका पुरुषार्थ बहुत तीव्र है, बाबा जो कहता है वो ये कर रहा है, कल पर नहीं छोड़ा है, कल तो काल का नाम है, जो आज का है बाबा ने मुझे अभी अभी करके दिखाना है, तो अभी अभी क्या करेंगे सभी, आज के दिन सभी, विशेष कल बाबा से मिलने का दिन है, और बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि अव्यक्त रूप में बाबा आता है, साकार तो नहीं है, अव्यक्त स्थिति की जरूरत है, और अगर जरा भी व्यक्त भान होगा तो अव्यक्त मिलन का आनंद, वो सुख अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी अभी से व्रत ले लो, मन और मुख, मुख के साथ साथ मन भी बिल्कुल शांत, व्यक्त भाव, व्यक्त भावनाओं से परे हो जाए। अगर इतनी अंदर की गहरी शांति, आनंद, सुख, सिर्फ सुख ही शांति नहीं, ऐसे ऐसे आनंदित हो आत्मा अंदर अंदर, तो जितना अभी से मन और मुख का मौन रखेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, बाबा से गुड नाइट करो, साइलेंस में सो जाओ, फिर साइलेंस में उठ करके सारा दिन ऐसी स्थिति बना लो, तो बाबा जब आएंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा कैसे बाबा अपने वतन से लाइट के घेरे में, ब्रह्मा के लाइट के शरीर के द्वारा प्रवेश हुए दादी में और मुरली चलाई, दिखाई देने लगेगा। स्थूल नेत्रों से देखने की बात है नहीं, लेकिन अनुभव के नेत्र, जिसको आज बाबा की मुरली में था, देखा है बाबा को, बार बार बाबा पूछ रहे थे बाबा को देखा है, तो कोई हाथ नहीं उठा रहे थे, बाबा को तो कईयों ने देखा ही नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे देखने से भी ज्यादा अनुभव के नेत्र काम करते हैं, आप सबने देखा है, तो कल हम बाबा को अनुभव के नेत्र से देखेंगे, ठीक है, लेकिन देख वही सकेंगे, अनुभव के नेत्र उन्हीं के खुले रहेंगे जो बहुत अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। तो सभी सारा दिन मौन में, अव्यक्त स्थिति में रह करके सारे दिन का आनंद लेना और प्रभु मिलन का शाम को रस प्राप्त करना। ओम शांति। We'll be right back.